ஓம் சாந்தி. வெல்கம். பஹத் குஷ் நசீப் ஹை ஆப் சபி. மும்பை ஜெசே ஷஹர் சே ஜஹா பர் ஷோர் ஷராபா ஹை, பஹத் பீட் ஹை, ரஷ் ஹை, வஹா சே குச் தினோ கி ஃபுர்சத் லேகர் க்யான் சரோவர் மே ஆயே ஹை. கேசா லக் ரஹா ஹை ஆப்கோ? அச்சா லக் ரஹா ஹை? ஹாம், பஹத் அச்சா லக் ரஹா ஹை, க்யூன்கி ஹமே பி பஹத் அச்சா லக் ரஹா ஹை. ஆப்கே பினா க்யான் சரோவர் சுனா ஹை நா? ஆப் ஆயே பலே பதார், ஹாம், பாபா கி பஹார் ஆ கயி, பஹத் அச்சா. சோ மே சுனா ஹை, தேகா பி ஹை, அக்சர் ஆப் பாண்டவ் பவன் மே ஆதே ஹை, இஸ் பார் க்யான் சரோவர் மே ஆயே ஹை, குஷி கி பாத் ஹை. ஆஜ் ராஜயோக அப்யாஸ் சே சம்பந்தித் ஜிஸ் பஹலே க்யான் கி ஆவஷ்யக்தா ஹை உஸ் பர் ஹம் சர்ச்சா கரேங்கே. ஜிஸே கஹா ஜாதா ஹை செல்ஃப் ரியலைசேஷன், குத் கோ ஜான்னா, சமஜ்னா ஔர் குத் கா அனுபவ் கர்னா. ராஜயோக அப்யாஸ் ரியலைசேஷன் கி வோ தர்ட் ஸ்டேஜ் ஹை ஜிஸ்கா ஃபவுண்டேஷன் ஹோதா ஹை நோயிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சிங். சோ செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கிஸ் லியே கர்னா ஹை? தோ செல்ஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கே லியே. ஜப் ஹம் குத் கோ ரியலைஸ் கர்னே லக்தே ஹை, குத் கா அனுபவ் கர்னே லக்தே ஹை, தப் அப்னி ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஔர் அப்னி வீக்னஸஸ் கோ ஹம் அச்சி தரஹ சே மஹ்சூஸ் கர்தே ஹை. ஔர் க்யா ஹோதா ஹை? அக்சர் ஹம் மஹ்சூஸ் தோ கர்தே ஹை, பரந்து ஹம் வீக்னஸஸ் கே காரண் அப்னே ஆப் கோ வீக் சமஜ்தே ஜாதே ஹை, ஔர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் கோ அப்னி சக்தியோ கோ நெக்லெக்ட் கர்தே ஹை. ஔர் சக்தியோ கோ நெக்லெக்ட் கர்னே கே காரண் ஜோ சக்தியா ஹை ஜின்கா இஸ்தமால் கர்ம மே ஹோனா சாஹியே வோ நஹீ ஹோதா ஹை. ஔர் ஜப் ஆப் கர்ம மே ஆதே ஹை தோ சாம்னே வீக்னஸ் ஆதி ஹை, கமி கம்ஜோரி ஆதி ஹை. ஔர் ஃபிர் வீக்னஸ் கே பாத் க்யா ஹோதா ஹை? பஹத் சாரி நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் ஔர் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் கே ஜால் மே ஹம் ஃபஸ் ஜாதே ஹை. கியா கரே, கேசே கரே, மேரே சாத் ஐசா க்யூ ஹுவா, ஐசா நஹீ ஹோனா சாஹியே தா, மே ஹெல்ப்லெஸ் ஹூ, மே குச் நஹீ கர் சக்தி ஹூ, இஸ் தரஹ கே விசார் ஹமே உதாஸ், நிராஷ், ஹதாஷ் ஔர் ஹோப்லெஸ் பனா தேதே ஹை. தோ ஆஜ் கே ஜோ லெசன் ஹை செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கா, உஸ்கோ ஹமே குத் கா, குத் கி ஸ்ட்ரென்த், குத் கி தாக்கத் கோ மஹ்சூஸ் கரானே வாலா லெசன் ஹை கி ஹமாரே பாஸ் ஜீவன் ஐசா தோ நஹீ ஹை கி உஸ்மே கோய் பரிஸ்தி நஹீ ஆயேகி. ஜீவன் மே ஹர் எக் கே ஜீவன் மே கோய் நா கோய் பரிஸ்தி தோ ஆயேகி ஹி, பரந்து உஸ்கா சாம்னா கர்னே கே லியே மேரே பாஸ் கௌன் சே வெபன்ஸ் ஹை, கௌன் சே ஹத்யார் ஹை, ஸ்பிரிச்சுவல் வெபன்ஸ் உஸ்கா முஜே பதா ஹோனா சாஹியே. ஔர் இசி லியே ஆஜ் கா லெசன் ஹை. तो राजयोग अभ्यास का ये फाउंडेशन लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है. हम यहां हमेशा याद करते हैं कि ये जो फाउंडेशन वाला लेसन है वो अंत तक हमें याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि यही लेसन है, यही अंडरस्टैंडिंग है जो हमें अंत तक काम आएगी. इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने माइंड को, बुद्धि को चारों तरफ से डिटैच करके अपने आप में ले आए. वन मिनट की एक्सरसाइज है. आपने मेडिटेशन तो किया, काफी देर से बैठे होंगे आप. अब हमारे मन और बुद्धि को यहां इस जगह पर खुद के साथ महसूस करना है एक मिनट में. सो थोड़ा सा अलर्ट होके बैठ जाएं. तो राजयोग ध्यान को आंखों को खुली रख के किया जाता है, परंतु आंखों से जो दिखाई दे रहा है उस पर मेरा ध्यान नहीं, लेकिन अपने आप पर ध्यान रखना है। तो हम उसकी शुरुआत करेंगे गहरी और लंबी सांस लेने से। सो सबसे पहले लंबा और गहरा सांस ले, महसूस करें सांस को भीतर जाते हुए, बाहर आते हुए। अपने सांस का पीछा करें, भीतर में कहां तक सांस पहुंच रही है, क्या वो स्टमक पेट तक जा रही है, तो उसको फील करें पेट तक पहुंचते हुए, और पेट से ही सांस को बाहर आने दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। भीतर जाती हुई सांस के साथ वातावरण की पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश होने दें। बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने बॉडी और माइंड के सारे टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी को बाहर छोड़ दें। पॉजिटिविटी को भीतर ले, सांस के साथ नेगेटिविटी को बाहर छोड़े। अपने मन और शरीर को रिलैक्स 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 महसूस करें। गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को सिर से लेकर पांव तक फील करें। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को मस्तक के बीच एक प्रकाशमान ज्योति की ओर एकाग्र करें। बिंदु, ज्योति, प्रकाश, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में आंखों के पीछे निश्चित स्थान पर आत्म ज्योति। दिव्य प्रकाश, डिवाइन एनर्जी, यही मेरा असली अस्तित्व है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, मास्टर। गहरी सांस ले, आत्मा में सर्व सकारात्मक शक्तियों का खजाना है। महसूस करें उस खजाने को। भीतर से पॉजिटिविटी से भरपूर आत्मा, ये जो कनेक्ट हमने फील किया अपने उस खुद के साथ, शरीर से अलग आत्मशक्ति के साथ जो कि पॉजिटिविटी से भरपूर है, अब उसे समझना है। किसी ने किया होगा कनेक्ट फील, किसी ने नहीं भी किया होगा, लेकिन यही पहली स्टेप है टुवर्ड्स डीप राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस। राजयोग अभ्यास को हम तीन शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, उसका व्याख्या कर सकते हैं। राजयोग अभ्यास एक तीन शब्दों में समाहित बहुत सुंदर अभ्यास है। पहला शब्द जो राजयोग अभ्यास को एक्सप्लेन करता है वो है प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता के अभ्यास को राजयोग कहा जाता है। दूसरा शब्द जो राजयोग अभ्यास को डिफाइन करता है वो है प्रैक्टिसिंग कनेक्शन, कनेक्शन संबंध, रिलेशन जोड़, वो राजयोग अभ्यास है। और तीसरा शब्द है जो राजयोग को स्पष्ट करता है, प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेशन, सुसंवाद का अभ्यास। एकाग्रता किस चीज पर करनी है? अपने मन को हमें एकाग्र करना है आत्मज्योति, उस प्रकाश के ऊपर। फिर दूसरी एकाग्रता परम ज्योति परमात्मा के ऊपर मन को एकाग्र करना है। कनेक्शन किसके साथ फील करना है? सबसे पहले आत्मा के साथ, मैं आत्मा हूं और आत्मा के साथ मेरा वो कनेक्ट मन और बुद्धि से फील करूं। दूसरा कनेक्शन मुझे किसके साथ फील करना है? वो है परमात्मा के साथ, कनेक्शन। ओके, इसी को हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? सेल्फ टॉक, खुद के साथ बातें करना, खुद के मन को खुद के साथ बातों में व्यस्त करना, यह है कम्युनिकेशन। और उसे हम सुसंवाद कहते हैं क्योंकि उस कम्युनिकेशन में पॉजिटिविटी है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, होप है, हर तरह की पॉजिटिविटी। जब मैं खुद के साथ बात करता हूं या करती हूं तब महसूस करनी है। और दूसरा हमें कम्युनिकेट करना है परमपिता परमात्मा के साथ। कम्युनिकेशन का मतलब है टू वे, मैं भी सुनाऊं और सामने से भी सुनूं। तो परमात्मा की जो मैसेजेस है, जो संदेश है मेरे प्रति, वो मुझे सुनना है। लेकिन ये तीनों ही चीजें कब हो सकती है? जब मुझे साइलेंस का अनुभव हो। आज तक हमने शोर का बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है। आपने महसूस किया होगा जब घर में कोई नहीं होता है, बिल्कुल शांति होती है, तो बेचैनी होती है कईयों को कि अरे क्या है, कोई नहीं है, कोई आवाज ही नहीं है। और मुंबई में रहने वालों को तो 24 आवर्स शोर का अभ्यास है, शोर के साथ जीते हैं। बट वो शोर की जो आदत है उससे हमें अपने आप को साइलेंस की आदत की तरफ ले जाना है। आप पूछेंगे क्यों, क्या जरूरत है, हमें तो अच्छी तरह से आदत है शोर की। हम तो जब ट्रेन की आवाज नहीं सुनेंगे तो नींद नहीं आएगी। कई लोग हैं जिनको आवाज के बिना नींद नहीं आती है, कोई शोर होना चाहिए, वो नींद नहीं आएगी, खाना हजम नहीं होगा। तो नहीं, लेकिन आत्मा का असली स्वभाव है शांति, और उसे शांति की आवश्यकता है। इसीलिए बेचैनी है, हर जगह पर बेचैनी है। और फास्ट सोच रहे हैं हम, जैसे फास्ट ट्रेन है, फास्ट चलना है, फास्ट बोलना है, फास्ट सुनना है, और फास्ट फूड के साथ जीना है, तो हमारी लाइफ फास्ट हो गई है। परंतु आत्मा का ओरिजिनल नेचर है साइलेंस, शांति, उसे शांति चाहिए। और फिर एक दिन आता है हम सोचते हैं बस बहुत हो गया, अब तो थोड़ा सा मैं साइलेंस को एक्सपीरियंस करूं, इसलिए आप चले जाते हैं मंदिर में थोड़ी देर के लिए, वहां शांति होगी। लेकिन क्या मंदिर में शांति मिलती है? वहां और ज्यादा शोर होता है, घंटों का शोर होता है, भीड़ भड़ाका होता है। और अगर हम चाहे कि कहीं मुझे साइलेंस कोई जगह मिल जाए, कोई जगह नहीं है। तो अगर मुझे अपना ध्यान, राजयोग, कॉन्सेंट्रेशन, कम्युनिकेशन उसमें आगे बढ़ना है और उसके मैजिक को अपने लाइफ में यूज करना है, तो मुझे साइलेंस से शुरू करना होगा। 24 घंटे में कोई एक 10 मिनट का समय खुद के साथ मैं बिताऊं, साइलेंस में खुद का एक्सपीरियंस करूं। बहुत सारी एनर्जीज हमारे भीतर है जो हमारे स्ट्रेस कोपिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो सारे दिन का जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स होती है उसको डील करने के लिए हम अपने अंदर की शक्तियों को यूज कर सकते हैं। तो आज का लेसन है सेल्फ रियलाइजेशन का। तो जो ये ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य व्यक्ति है हम, उसमें दो शक्तियां एक साथ काम करती हैं। पहली शक्ति जो हमारी फिजिकल सेल्फ है, शरीर फिजिकल सेल्फ है। हम कहते हैं ना माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब क्या है? मैं। तो माई सेल्फ में दो सेल्फ समाये हुए हैं, एक है फिजिकल सेल्फ और दूसरा है स्पिरिचुअल सेल्फ, जो फिजिकल सेल्फ को या शरीर को चला रहा है। एक है आउटर सेल्फ, एक है इनर सेल्फ। दोनों सेल्फ को एक साथ हम कहते हैं माई सेल्फ। डेड बॉडी कह सकती है माई सेल्फ? डेड बॉडी बोलेगी माई सेल्फ फलाना, माई सेल्फ? नहीं, क्योंकि उसमें वो सेल्फ है ही नहीं जो इनर सेल्फ है। तो आउटर सेल्फ क्या है? ये कवर क्या है बॉडी, वो बॉडी क्या है? सो हमें अपने शास्त्रों या हमारे भारतीय सनातन संस्कृति से ये अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन मिला है कि हमारा शरीर क्या है। तो कहते हैं शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन से 5 तत्व? जो प्रकृति में 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। ठीक है, हमने सुना तो है, पर कैसे शरीर हमारा 5 तत्वों से कैसे मिला है, कैसे बना है? तो हम जानते हैं हमारे शरीर का 70% भाग पानी है। साइंस ने प्रूव किया है 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। ठीक है, कन्विंस्ड। फिर शरीर में मिट्टी कहाँ है, जमीन कहाँ है, धरती कहाँ है? तो हम देखते हैं हिंदू संस्कृति में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मा, तो उसे जला दिया जाता है। तो जब शरीर जलता है तो पीछे क्या बचती है? राख, एशेस, वो है हमारी मिट्टी। वो मिट्टी है शरीर में, हड्डी मांस के रूप में मिट्टी है। शरीर में अग्नि कहाँ है? पेट में। जठर अग्नि कहा जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे हमारे शरीर का एक मेंटेन बॉडी टेम्परेचर होता है ना, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम उससे ऊपर गया आप कहेंगे बुखार 102, उसके नीचे आया व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। जब कोरोना काल में भी आपने देखा टेम्परेचर चेक कर किया जाता था ना, यहां वो लगा के। सो वो अग्नि का स्रोत है हमारे शरीर में। फिर हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे दूसरे गैसेस भी हमारे शरीर का हिस्सा है। और लास्ट में आता है आकाश। आकाश क्या है? धरती के साथ जुड़ी हुई बहुत बड़ी खाली जगह, स्पेस को आकाश कहते हैं ना, स्पेस है। अभी अभी हमने स्पेस में, आकाश में, चांद पर चंद्रयान छोड़ा। कितनी देर घूमता रहा स्पेस में और फिर जाकर लैंड हुआ। तो आकाश मतलब खाली जगह। इस समय आपके और मेरे बीच में भी एक आकाश है, स्पेस है ना। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी कुछ एम्प्टी स्पेसेस है, खाली जगह है। जैसे कान में है, नाक में है, मुंह में है। फिर अंदर भी जो बॉडी के पार्ट्स है वो पार्ट्स भी स्पेस के साथ कनेक्टेड है। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में दो इंद्रियां है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बीच में भी एक छोटा सा स्पेस है, तो हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है, और प्रकृति भी, वो जो स्टेज है वो भी पांच तत्वों से मिलकर बना है। अब पांच तत्व की इस प्रकृति का पहला नियम है, प्रकृति से बनी हुई कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है, और जब एग्जिस्ट होती है, वो जीवन में आती है, तो वो कुछ समय तक जीवित रहती है और उसके बाद खत्म होती है, है ना। कोई भी चीज, ये लकड़ी ले लीजिए, बनने में इसको थोड़ा टाइम लगा मैन्युफैक्चर होने में, अब ये इसका जीवन थोड़ा समय रहेगा, फिर उसके बाद ये वेस्ट हो जाएगी, हम फेंक देंगे ना, वातावरण में मिल जाएंगी। वैसे ही हमारा संपूर्ण शरीर तैयार होने के लिए कितना टाइम लगता है? 9 महीने। हाँ, अगर 7 महीने का बच्चा पैदा हो जाए तो प्री मैच्योर बेबी होता है, उसमें कई तरह की प्रॉब्लम मशीन में होती है, बॉडी में होती है, माइंड में भी होती है, क्योंकि आत्मा को भी शरीर के साथ 9 महीने कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत होती है, अदरवाइज आत्मा भी अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण महसूस नहीं करती है। तो शरीर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना टाइम लगता है? 9 महीने, है ना। फिर जब शरीर और आत्मा दोनों एक साथ जन्म लेते हैं, तो ये जो शरीर 9 महीने में तैयार होता है, तो आत्मा वहां कब और कैसे जाती है? आत्मा तो शरीर में नहीं होती है उस समय, हाँ? 5 महीने के दौरान कोई ऐसा समय होता है जब निश्चित समय पर आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने का अभ्यास अंदर होता है। आत्मा उस शरीर के साथ रहने का अभ्यास करती है, और फिर 9 महीने के बाद जन्म होता है। जन्म दिन मनाते हैं हम। जन्म किसका हुआ? आत्मा का, शरीर के साथ हुआ। और जन्म से लेकर मृत्यु तक, शरीर की एक्सपायरी डेट क्या होती है? जैसे हर चीज पर एक्सपायरी डेट होती है, है ना। आप मेडिसिन लेते हैं, हर चीज पर एक्सपायरी डेट होते हैं, हमारे शरीर की एक्सपायरी डेट क्या है? राइट, एक्सपायरी डेट भी है। जिस दिन जन्म होता है, हमारे शास्त्रों में ये बात बताई गई है, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन उस शरीर के मृत्यु का समय, स्थान और तरीका निश्चित होता है। समय, कौन से समय पर आत्मा शरीर छोड़ेगी, कौन से स्थान पर शरीर छोड़ेगी। आपने ये देखा होगा, आप रहते सालों साल एक जगह पे है और शरीर कहीं जाकर छूट जाता है, तो स्थान भी निश्चित होता है, और तरीका कैसे शरीर छूटेगा। अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे कि जन्म के समय के साथ उनकी पत्रिका बनती थी और हर चीज उसमें लिखी हुई होती थी कि शरीर की रचना किस तरह की होगी, ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, विचार कैसे होंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, तो मृत्यु की डेट निश्चित होती है। परंतु अब सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि क्या आने वाले मृत्यु के समय के लिए हम मेंटली तैयार हैं? तैयार है? कौन कौन तैयार है, हाथ उठाए। हम तैयार हैं, हमें पता है शरीर की मृत्यु होगी, और पता नहीं हमारे कर्मों के हिसाब के अनुसार कहां होगी, कैसे होगी और कब होगी, नहीं पता है, पर हम तैयार हैं। क्यों तैयार है? क्योंकि हमें वास्तविकता पता है शरीर की, वो तो खत्म होना ही है। लेकिन अब हम आते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, उसकी आत्मा की वास्तविकता क्या है। अब सबसे पहली बात, आत्मा को क्या हम देख सकते हैं? आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते? अति सूक्ष्म है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उन्हें आंखों से नहीं देखते हैं। उसके एग्जिस्टेंस का हमें पता है, कौन सी एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हवा है, उस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं लाइट में, फैन में, हर चीज में, लेकिन क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते. वायर को तोड़ के देख सकते? नहीं देख सकते. पर उसका अस्तित्व है, यूज कर रहे हैं हम. फिर हवा भी है, दिखाई नहीं देती है लेकिन हम जानते, फील होती है हमें. और एक ऐसी एनर्जी है जिसको खुली आंखों से हम नहीं देखते हैं, देख सकते हैं. हम सभी ने पढ़ाई की है, हमें पता है एटम एक अति सूक्ष्म कण होता है किसी भी चीज का, उसे एटम कहते हैं. और उस एटम को खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, इतना सूक्ष्म बिंदु होता है वो. परंतु उस एक एटम में तीन क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं. तीन शक्तियों से मिलकर एटम बनता है. कौन सी तीन शक्तियां हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तीनों को मिलाकर एटम कहा जाता है. उसी तरह से हमने आत्मा को, एटम को समझा, अब आत्मा को समझना आसान है. आत्मा भी अति सूक्ष्म बिंदु रूप शक्ति है जिसे खुली आंखों से देख नहीं सकते. इसीलिए जब शरीर में प्रवेश करती है तब भी नहीं दिखाई देती, शरीर छोड़कर जाती है तब भी नहीं दिखाई देती है. कोशिश भी नहीं कर सकते हैं हम, परंतु हां, उस आत्मा को, उसके अति सूक्ष्म रूप को देखने के लिए हमें एक और आंख मिली हुई है, इसको तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई मिली है. जैसे मैंने जब एटम का वर्णन किया तब क्या आप एटम को देख पाए, मन से देख पाए, विजुलाइज कर पाए? एटम को हम विजुलाइज कर पाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी की पेंटिंग करनी है आपको, दिखाना है, तो हम अंदाजन दिखा देते कि ऐसे बिजली कौंधते हुए हमने देखा है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना? तो हमें पता है, हमारे मन की आंख से हम उन चीजों को देख सकते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान है, नॉलेज है. तो इसीलिए आज भी हम आत्मा के बारे में जानकारी, नॉलेज हासिल करेंगे. तो सबसे पहली बात, आत्मा एक बिंदु रूप शक्ति है. यहां चित्र में भी दिखाया है, शरीर है हड्डी मांस का स्केलेटन. बस उस स्केलेटन में जान कब आती है? जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है. आत्मा और शरीर दोनों को मिलाकर मनुष्य, जीव आत्मा या ह्यूमन बीइंग कहा जाता है. तो वो जो ह्यूमन है उसमें शब्द आता है ह्यूमस. ह्यूमस का मतलब है मिट्टी. ह्यूमस का मतलब है मिट्टी. तो शरीर है मिट्टी का, लेकिन शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति है, जो बीइंग है, वो कौन है? वो है आत्मा. इसीलिए मनुष्य को ह्यूमन बीइंग कहा जाता है. एक संस्था है जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन, पता है आपको? अब बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या है कि मनुष्य बनो तो सही पहले. खुद को मनुष्य कहते हो, मनुष्य जैसी गुण तो हो आप में. तो बीइंग का मतलब है आत्मा और ह्यूमन का मतलब है शरीर. दोनों को मिला के ह्यूमन बीइंग कहा जाता है. तो जैसे एटम तीन एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है, अति सूक्ष्म बिंदु रूप शक्ति, वैसे आत्मा भी अति सूक्ष्म बिंदु रूप शक्ति है जो तीन शक्तियों को मिलाकर बनती है, मन, बुद्धि और संस्कार. आप सभी के पास मन है? है? किसके पास मन है बताइए? सबके पास मन है? जरा दिखाना. है, मन है. बुद्धि है? बुद्धि है? किसके पास बुद्धि है? थोड़ों के पास नहीं है, हाथ खड़ा नहीं कर रहे. बुद्धि है. प्रमाण क्या है? बैठे हैं, जवाब दे रहे हैं. तो बुद्धू तो नहीं है ना, हम बुद्धू नहीं है ना. बुद्ध भी है, बुद्ध है, बुद्धू नहीं, बुद्ध है. एक थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए, एक्टिव करने के लिए एक थोड़ा सा जोक सुनाती हूँ मैं. हाँ, हंसी की बात सुनाती हूँ. हमारे यहाँ विदेशी आते हैं ना, तो सभी विदेशियों को अंग्रेजी नहीं आती है. जो दूसरे दूसरे कंट्रीज से आते हैं ना, स्पेन है, ब्राजील है, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती है और हिंदी भी नहीं आती है। तो हमारी यहाँ एक बहन थी, उसको आदत थी बोलने की, बुद्धूराम बुद्धूराम। कोई काम अगर ठीक से नहीं किया ना तो बोलेगी बुद्धूराम। तो एक अंग्रेज था ब्राजील का, उसको उसने बोला अरे बुद्धूराम। तो उसने राम शब्द तो उसको पता है, त्रेता युग का राम है ना, और बुद्धू का पता नहीं है उसको, तो बोला आई एम नॉट बुद्धू राम, आई एम बुद्धू कृष्णा। क्योंकि उसको पता है त्रेता युग में तो जाना नहीं है मुझे। बुद्धू कृष्णा, आई एम बुद्धू कृष्णा, आई एम बुद्धू नारायण। सो बुद्धू नहीं है हम, बुद्धिमान है। तो बुद्धि भी है हमें, है ना, और संस्कार। संस्कार मना हमारी आदतें, हैबिट्स, हाँ, जो हम कर्म करते समय, बोलते समय, बातों, मतलब हर चीज के समय हमारे संस्कार दिखाई देते, वो भी नहीं दिखाई। तो ये तीनों सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आत्मा को भी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, हम उसको अपनी तीसरी आंख से देखना शुरू करेंगे। तो मन बुद्धि संस्कार को जानना मतलब आत्मा को जानना। मन क्या है? सोचने की शक्ति। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, और विचारों से ही हम खुश रहते हैं या विचारों से ही हम परेशान होते हैं। ज्यादा विचार ज्यादा परेशानी, कम विचार कम परेशानी। अब हमारे विचार, सारे दिन में हम बहुत सारे विचार करते हैं, हम उसको दो कैटेगरीज में बांटेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इसके अलावा दो कैटेगरीज और है विचारों की। अभी सुबह आपको यहां आना था, कितने बजे आना था? 7 बजे, लेकिन आपने 6:30 से तैयारी की और आए, सोचा कि अरे हमें 7 बजे पहुंचना है तो इतने बजे से तैयारी करनी होगी। उन विचारों को, उन सोच को कहते आवश्यक विचार, जो सारा दिन आपको जो कार्य करना है उसके लिए जो सोचना पड़ता है उसे आवश्यक विचार कहते हैं। लेकिन आवश्यक विचार के साथ दूसरे भी विचार आते हैं, अरे मैं पहुंच नहीं पाई तो, मैंने मिस किया तो, मैं उठ नहीं पाई तो ये सारे क्वेश्चन मार्क वाले विचार है ना, आते हैं हमारे मन में, उसको कहते अनावश्यक विचार। जो सोचने की जरूरत नहीं है वो भी हम सोचते हैं। इसलिए क्या होता है, जो जरूरत है सोचना वो रह जाता है, और हमारा टाइम किसमें वेस्ट जाता है, व्यर्थ विचारों में। तो ये दो प्रकार के विचार है। तो यहां से राजयोग अभ्यास की शुरुआत होती है। सारे दिन में जो मुझे सोचना जरूरी है वही मैं सोचूं, ऐसे मन को आदत डालना, और व्यर्थ विचार आए तो उसको मैं फाइट कर सकूं, अलग कर सकूं, और फोकस मेरा पॉजिटिव आवश्यक विचारों पर ले जा सकूं। ये मन का अभ्यास, इसको, ये पहला कदम है राजयोग का, कि आवश्यक विचारों को ज्यादा सोचना और अनावश्यक को कम करना। दूसरा राजयोग का अभ्यास है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही विचार मन में करते हैं। जब भी हम सोचते हैं हमारे विचारों के तीन दायरे हैं, तीन एरियाज में ही हमारे विचार जाते हैं। पहले हम सोचते हैं अपने बारे में, दूसरा हम सोचते हैं हमारे आसपास के लोगों के बारे में, तीसरा हम सोचते हैं हमारे जीवन की परिस्थितियों के बारे में, कि जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं उनके बारे में सोचते हैं। अब तीनों ही जगहों पर हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का ड्रम बजता रहता है, कभी हम इधर कभी हम उधर, ऐसे होते रहते हैं, है ना। सो अपने बारे में हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या सोचते हैं, तो हम सब में कुछ अच्छाई है और कुछ कमी कमजोरी है, हम बुराई भी नहीं कहेंगे, कमी कमजोरी है। तो अगर हम अपनी अच्छाई के बारे में सोचकर, अपने गुणों के बारे में सोचकर, अपनी शक्तियां, अपने पोटेंशियल के बारे में सोचकर उन पर काम करते हैं तो हम अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन हम अपनी कमी कमजोरी बुराई के बारे में सोचते हैं तो हम अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमें खुद से पूछना है कि मैं किस तरह से सोचता हूं पॉजिटिव या नेगेटिव, ज्यादा विचार मेरे मन में कौन से आते, पूछे अपने आप से। नेगेटिव ज्यादा आते हैं खुद के बारे में या पॉजिटिव ज्यादा सोचते हैं? जो कहते हैं कि हम अपने बारे में मैक्सिमम नेगेटिव सोचते हैं वो हाथ उठाए। वेस्ट, नेगेटिव से भी ज्यादा वेस्ट होता है ना, नेगेटिव सोचते हैं। वेस्ट जिसके मन में ज्यादा आता है वो हाथ उठाए, व्यर्थ विचार इधर उधर के जिसकी जरूरत नहीं है। और जो कहते हैं कि नहीं हम पॉजिटिव सोचते हैं वो हाथ उठाए, ड्रम बजता है। तो यहां से राजयोग की शुरुआत होती है। राजयोग अभ्यास का पहला कदम है पॉजिटिव सोचने की, अपने आप को आदत डालना। मैक्सिमम विचार हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। आप कहेंगे हमारे लाइफ में ऐसा कुछ पॉजिटिव है नहीं जिसके बारे में हम सोच सके, सब कुछ नेगेटिव है। तो यहां पर हम आपको नेचर का एक रूल बताना चाहते हैं, एक डिफॉल्ट सिस्टम बताना चाहते हैं। प्रकृति और परमात्मा ने, अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा हम सबको 90% पॉजिटिव्स दिए हैं और 10% कोई कमी कमजोरी या नेगेटिव हमारे लाइफ में है। जरा कुछ सेकंड्स के लिए सोचिए अपने लाइफ के बारे में, पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा। फैक्ट ये है कि प्रकृति और परमात्मा ने 90% पॉजिटिव दिया है, स्ट्रेंथ दी है, ताकत दी है, 10% कमी है। तो लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या होता है, वो 90% को हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। वो 10% हमें सताता रहता है और हमारा ध्यान उसी पर जाता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और इसीलिए नेगेटिव सोच ज्यादा होती है। आप सोचिए जिस चीज पर आप ज्यादा ध्यान देंगे वो चीज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। सो नेगेटिव बढ़ता जाता है और पॉजिटिव कम होता जाता है। बट नेचर ने और परमात्मा ने तो हमें नेगेटिव नहीं दिया, वो हमने क्रिएट किया, हम क्रिएट करते। तो राजयोग अभ्यास का पहला कदम है पॉजिटिव और नेसेसरी थिंकिंग की प्रैक्टिस करना। तो क्या होगा, मन शक्तिशाली बनेगा, पावरफुल बनेगा। मन में इतनी ताकत आएगी कि आप जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वही होगा। तो जब हम किसी भी विचार को दृढ़ता के साथ सोचते हैं, यस मैं करूंगा, मेरे से होगा, तो उस विचार को संकल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जब भी हम विचार पॉजिटिव और पावरफुल करते हैं, यस आई कैन डू, तो उस विचार को संकल्प कहते हैं। तो अभी एक अभ्यास करेंगे हम। हाँ, सभी स्ट्रेट होकर बैठ जाएं। अपने जीवन में सुख शांति और खुशी के लिए कोई एक ऐसा पॉजिटिव विचार करना है जो कि संकल्प के रूप में हो, दृढ़ हो। ओके, एक संकल्प करने के लिए एक सेकंड लगता है, एक सेकंड से भी कम टाइम लगता है। तो कोई बता सकता है क्या संकल्प किया? हां जी बताइए। वंडरफुल, ग्रेट। आप बताइए। बहुत अच्छा। बिल्कुल, अपने लिए पॉजिटिव सोचूंगा। राइट, मैं अपने जीवन के द्वारा प्यार का संदेश सबको दूंगी। हां जी, बैठ के बताइए, बैठ के। संकल्प किया आज, जिसने भी संकल्प किया दृढ़, वो बिल्कुल साकार होगा। क्यों? क्योंकि जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो हमारा विजन, एम क्लियर होता है। और दूसरी एक मैजिक आपको बताएं, जब भी आप दृढ़ संकल्प करते हैं तो आपकी सारी प्रकृति, पांचों ही तत्व और परमात्मा, एक्स्ट्रा पावर्स आपके संकल्प में भरते हैं, प्रकृति और परमात्मा। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव हमसे कहते हैं, रोज अमृत वेले उठकर बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करो। तो वो संकल्पों में शक्ति भरने का काम हम तो भरते हैं, बट परमात्मा और प्रकृति भी करती है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखेंगे, सुबह उठ के जो थॉट्स करेंगे आप कि आज सारे दिन में मुझे ये करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, सारे अपने घर के काम टाइम पर करने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, जिसको जो देना है लेना है वो काम समय पर करने हैं। सुबह उठ के एक माइंड मैप बना लेंगे तो प्रकृति और परमात्मा हमें हेल्प करेंगे। वो तो एक्सटर्नल हेल्प मिली, लेकिन इंटरनल हेल्प क्या मिलेगी? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा जिन है, जो हमें मदद करेगा, कि हेल्प करेगा, कम आपने संकल्प किया ना, चलो मैं तुम्हें मदद करता हूं। लेकिन उसकी जगह पर हमने कोई नेगेटिव थॉट किया कि अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो क्या होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज मिल जाएगा कि मेरे मास्टर ने आज कमजोर संकल्प किए हैं, मुझे उसी में उसको मदद करनी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपको हेल्प करना, आपको हेल्प करना। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, मास्टर ने तो कमजोर संकल्प किए, मुझे भी उसको कमजोर ही रिजल्ट देना है। ठीक है, चलेगा ऐसे नहीं। तो सुबह उठ के अपने लिए, अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे संकल्प, जितने अच्छे संकल्प हम करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इसीलिए मन को, विचारों को कहा जाता है हमारे संपूर्ण जीवन रूपी वृक्ष का बीज, जहां से सब चीजों की शुरुआत होती है। तो मन विचारों की शक्ति है, बुद्धि है समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग। यहां पर 300-400 लोग बैठे हैं, पता नहीं कितने हैं लेकिन हैं, तो वो सुन एक ही बात रहे हैं लेकिन समझ अलग अलग रहे, सबकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग है। और उसका कारण क्या है? बुद्धि का मतलब है आप हमारा एक्वायर्ड नॉलेज, बचपन से लेके अब तक मैंने अपने बाहर के वातावरण से क्या सीखा है, वही हमारी बुद्धि डेवलप हुई है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसकी बुद्धि अच्छी होगी, परंतु उसके सामने एक अनुभवी व्यक्ति, क्योंकि उसने जीवन का की पढ़ाई पढ़ी है, तो उसकी बुद्धि और अच्छे से काम करेगी। पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अनुभव के शिक्षा की जरूरत है। तो बुद्धि है हमारा ज्ञान, नॉलेज। इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। कौन सा नॉलेज? जो ज्ञान अभी आप प्राप्त करते हैं उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, वो जीवन का फाउंडेशन है। सो वो बुद्धि में ग्रहण करना है। सो बुद्धि है समझ, बुद्धि है ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है, और बुद्धि है हमारा डिसीजन मेकिंग। आप सभी ने मिलके यहां आने का निर्णय लिया, सही लिया या गलत लिया? सही लिया, जो समझते सही निर्णय हाथ उठाए, 100% सही। देखिए यहां से हम कितना कुछ लेके जाएंगे, जा रहे हैं। सो बुद्धि का निर्णय कभी गलत भी हो जाता है। गलत होने का कारण ये है, कभी हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। बुद्धि से जो निर्णय लेना है उसका, उसके ऊपर जो प्रभाव करने वाली शक्ति है वो मन की नकारात्मकता। मन में अगर नकारात्मकता है तो बुद्धि भी नेगेटिव डिसीजंस लेगी। ठीक है, तो मन और बुद्धि का ये कोऑर्डिनेशन होता है। तो पॉजिटिव थॉट्स है तो डिसीजन मेकिंग परफेक्ट। फिर बुद्धि के बाद तीसरा जो शक्ति है वो है संस्कार। संस्कारों को हम आम भाषा में आदतें कहते हैं, मेरी हैबिट, मेरी आदत ऐसी है। तो हमारे पास अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की आदतें हैं, जो हम समझ सकते हैं कि ये बुरी आदत है या अच्छी आदत है। हमें कहां से मिलती है आदतें, कहां से सीखते हैं हम? वातावरण से। एक है, हाँ बिल्कुल, बाहर की आदतें जो हमने सीखी हैं, दूसरी हमारी आत्मा की ओरिजिनल भीतर की आदतें। तो बाहर जो हम सीखते हैं वो अनेक सोर्सेस है। सबसे पहले हम अपने माता पिता से, उससे भी पहले माता पिता के जीन्स से ऑटोमेटिक हमें कुछ संस्कार मिलते हैं। माता पिता में अगर कोई गलत या बुरे या अच्छे संस्कार है तो वो बच्चों में दिखाई देते हैं। दूसरा है संघ के संस्कार। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके संस्कार हम में देखे जा सकते हैं। जैसे मुझे याद है बचपन में मुझे भगत सिंह जी की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। क्यों? मैं इंस्पायर थी उनके लाइफ से कि क्या डेडिकेशन था उनमें, क्या जिद थी, छोटी उम्र में कितना अच्छा उनका विचार थे। तो उनके विचारों से मैं प्रेरित होती थी, इंस्पायर होती थी। अब दो चीजें होती है, एक है इंस्पायर होना और दूसरा है इन्फ्लुएंस होना। इन्फ्लुएंस होना का मतलब कि गलत से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वश होते हैं। और इंस्पायर, जैसे हम बड़े बड़े हमारे महात्माएं हैं उनसे हम इंस्पायर होते हैं, उनकी जो विचार है या उनके जो संस्कार है उनको हम अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं। जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना उनको भगत कहा जाता है, जो केवल हाँ आप तो बहुत अच्छे और हम ऐसे, जो इन्फ्लुएंस है वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे, केवल आपकी प्रार्थना और पूजा करते रहेंगे, उसको भगत कहते हैं। और जो इंस्पायर होकर देवी देवताओं से या अपने बड़ों से या सीनियर से अपने जीवन में कुछ ले आते हैं उसको कहते हैं इंस्पायर होना। अब जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना वो क्या करते हैं, अगर उनके जो देवता है या आइडल है उसने कुछ गलत किया तो वो गलत भी वो कहते हाँ उन्होंने किया ना वही सही है, मुझे गलत वैसा ही करना है। तो इस तरह से हम गलत आदतों में फंस जाते हैं। तो संघ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई महान व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है तो वो संघ सत्संग नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए संघ केवल एक का करना है, वो कल आप सीखेंगे। तो संघ से भी संस्कार मिलते हैं। अब बाहर से जो संस्कार मिलते हैं उनका तो हमें पता है। अब हमारे आत्मा के पास परमात्मा के दिए हुए कुछ संस्कार है जो हमारे असली संस्कार है, वो कौन से है? तो अभी आप अलर्ट हो जाइए आपके अंदर की वो संस्कारों की प्रॉपर्टी को सुनने के लिए, जो आपकी रियल प्रॉपर्टी है। और वो संस्कार है सात। परमात्मा ने सभी आत्माओं को सात संस्कार देकर इस दुनिया में भेजा। तो कौन से वो सात संस्कार है? सबसे पहला संस्कार है शांति। आत्मा का ओरिजिनल नेचर है पीस। अशांति सीखा है हमने, गुस्सा करना सीखा है। तो आत्मा का ओरिजिनल नेचर है पीस। दूसरा आत्मा का ओरिजिनल नेचर है लव, प्रेम। तीसरा है आनंद। चौथा है सुख। पांचवा है पवित्रता, शुद्धता। छठा है ज्ञान और सातवां है शक्ति। तो हम सब रिपीट करेंगे, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। ये सात जो संस्कार है परमात्मा ने मुझे देकर भेजा है वो मेरे पास ही है। लेकिन शांति बाहर ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेंगी, भीतर जाएंगे शांति का अनुभव होगा। प्यार बाहर ढूंढने जाएंगे, मुझे इससे प्यार मिले, इससे प्यार मिले। निस्वार्थ पवित्र प्यार कहीं से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला प्यार का अनुभव भीतर से करना है, उसको सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद को एडमायर करना, खुद को अच्छी तरह से जानना, खुद के साथ जुड़ना, वो पहला अनुभव है मेरा प्यार का खुद के साथ। और दूसरा अनुभव है प्यार का खुदा के साथ, परमात्मा के साथ प्यार का। वही एक सच्चा प्यार है। दुनिया में जो भी देहधारियों का आपस में है, मैं झूठा नहीं कहूंगी उसको, बट वो टेम्पररी है, स्वार्थ के आधार पर है। कुछ प्राप्ति के आधार पर है, और मेरा मुझसे प्यार और परमात्मा का मुझसे प्यार वही केवल निस्वार्थ है। और इसमें और एक चीज ऐड करनी है, और एक लोगों को ऐड करना है, वो है माता पिता का प्यार। आप देखेंगे 99% माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ और पवित्र प्यार करते हैं, तो वहां का प्यार पाने की जगह पर हम कहीं और ढूंढते हैं। माता पिता के प्यार को डोंट केयर, इग्नोर करते हैं, लेकिन हम सबको इस शारीरिक देह के माता पिता के प्यार के अनुभव की आवश्यकता है अंत तक, लेकिन हम बीच में ही उनका साथ छोड़ देते हैं। तो अगर हमें सच्चे प्यार का अनुभव करना है तो एक खुद से खुद का प्यार, परमात्मा से प्यार मेरा और उनका आपस में, और माता पिता से प्यार, ये प्यार का सच्चा अनुभव है। तो शांति, प्रेम, आनंद, आत्मा का असली स्वभाव है आनंद, खुशी। अच्छा, वो जो बच्चा बैठा है देखिए आपके बीच में, खड़े हो सकते हो बेटा, खड़े हो जाओ। ये बहुत खुश है इस समय। क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे? कुछ तो भी ऐसे ऐसे करके खेल रहा था। बहुत खुश है, देखिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट। क्या जरूरत है उसको? हा? क्या? अच्छा, खेल रहा है, खुश है। छोटी सी चीज उसको कुछ भी मिल जाए उसमें खुश है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे खुशी के मायने बदलते जाते हैं। मुझे ये चाहिए तब मैं खुश, मुझे ये चाहिए। पर खुशी मेरा असली संस्कार है। कुछ भी छोटी सी चीज मिल जाए मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी मेरी भीतर का स्वभाव है, मुझे खुश रहना मेरा अधिकार है। ये हमारा असली संस्कार है। किसके लिए? चीजों की, व्यक्तियों की, रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, पद, पोजीशन, मान सम्मान नहीं। खुश रहना हमारी आदत है, लेकिन हम बड़े होते हैं तो भूल जाते हैं, मुस्कुराना ही भूल जाते हैं, है ना। तो आनंद बहुत ऊंची स्टेज है। सुख, सुख का मतलब है संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन। आप सभी अपने आप से पूछिए, मुझे संतुष्ट रहने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्या मैं संतुष्ट हूं? जो है, जितना है, जैसा है, मैं संतुष्ट हूं? अपने धन से, अपने तन से, अपने संबंध से, पारिवारिक संबंध से मैं खुश, संतुष्ट हूं, सेटिस्फाइड हूं? तो हो जाइए, अगर नहीं है तो हो जाइए इस समय सेटिस्फाइड। क्या होगा इसका परिणाम, क्या होगा? जो जितना संतुष्ट रहता है, प्रकृति और परमात्मा उसको संतुष्ट करने के लिए जी जान से लग जाते कि नहीं, हमारा मास्टर संतुष्ट है, उसे और संतुष्ट करना है। तो जो हमें संतुष्ट होने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ अपने आप मिलेगा, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुख मना संतुष्टता, पवित्रता। हम देवी देवताओं को देखते हैं, पवित्रता है उनमें। छोटा बच्चा शुद्ध है, पवित्र है। तो हम भी, आत्मा अपने आप में पवित्र है। हमें अपवित्र क्या करता है? हमारे नेगेटिव और वेस्ट थॉट अपवित्रता है। जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उस पवित्रता का अनुभव होगा, शुद्धता का अनुभव होगा, वो है आत्मा की पवित्रता। ज्ञान आत्मा का नेचर है। हर वक्त हम कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं, परंतु जो सत्य ज्ञान है, जो अभी आपको प्राप्त हो रहा है, खुद के बारे में जानना, ये आत्मा का अधिकार है। जो आत्मा भूल गई, अब फिर से वो अधिकार ज्ञान का आत्मा प्राप्त कर रही है। और सातवां संस्कार है शक्ति। आत्मा बहुत पावरफुल है, विचारों में इतनी शक्ति है, एक सेकंड में विचार कहीं से कहीं जाकर पहुंच सकते हैं, विश्व के किसी भी कोने में। और विचार जब संकल्प का रूप धारण करता है तो वो शक्ति का अनुभव आप कीजिए, संकल्प साकार जरूर होगा, विचारों की शक्ति। और आत्मा के पास और कौन सी शक्ति है? शरीर में घुसने के लिए परमिशन लेती है आत्मा? बॉडी में जाना है परमिशन लेती है? नहीं, बॉडी से निकल कर जाना है परमिशन लेती है आपकी, मैं जाऊं? नहीं, उसको जब जाना है वो चली गई। अब आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है? संस्कार और कर्म, कर्म का अकाउंट, और विचार, ज्ञान, जो नॉलेज अभी हमको मिला है, ये है अविनाशी प्रॉपर्टी, इस पर हमें काम। तो जो हम ले जाने वाले हैं साथ में, उस पर हमें काम करना जरूरी है। तो हमारे संस्कार जो हम भूल गए हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, इसे बार बार याद करना होगा, ताकि वो संस्कार हमारे कर्म में आए और वो संस्कार हम अपने साथ लेके जाएं। या आप ये संस्कार लेके जाना चाहते हैं, मैं गुस्से वाली आत्मा हूं, मैं ईर्ष्या घृणा द्वेष नफरत वाली आत्मा हूं, मैं अहंकार वाली आत्मा हूं, ये लेके जाना चाहते? नहीं। तो कहा जाता है मृत्यु के समय जिस तरह के संस्कार, जिस तरह के विचार, जिस तरह का ज्ञान आत्मा में होता है, वैसा ही उसको जन्म मिलता है। ले जाते समय अगर हम बुरे संस्कार ले गई आत्मा, तो उसके बुरी जगह पर, बुरे परिवार में जन्म होगा। तो जो हमारी असली प्रॉपर्टी संस्कारों की है, उस पर हमें काम करना होगा। तो आत्मा तीन शक्तियों से मिलकर बनी है, मन बुद्धि और संस्कार। अब आत्मा इस शरीर में रहती कहां है? मस्तक के बीच में, जो शुरू में ही आपको स्थान बता दिया, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, आंखों के पीछे, हाइपोथैलेमस और प्यूटिटरी ग्लैंड्स के बीच में, एक स्पेस में। यह हमें किसने कहा? सर्वशक्तिमान परमात्मा ने। ये ज्ञान, इसको कसौटी पर कस के लेना, ऐसे नहीं लेना, और आप देखेंगे हर कसौटी पर कसेंगे वो खरा उतरेगा, क्योंकि दुनिया में किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारी किताबें लिखे हुए हैं, किसी को भी आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। वो उसको साइकोलॉजिस्ट जो है उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। आत्मा शब्द लोगों के पास उसका नाम ही नहीं है। कहते हैं आत्मा, बट क्या है? इतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो आत्मा क्या है? मन बुद्धि और संस्कार सहित एक सूक्ष्म बिंदु रूप शक्ति जो मस्तक में बीचों बीच रहती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अपने मन की बुद्धि रूपी आंख से, देखिए यहां एक अति सूक्ष्म बिंदु चैतन्य शक्ति फील होता है, फील होता है। कई लोग कहते हैं जब हम यहां कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहां दर्द होता है, सिर दर्द करने लगता है, जो शुरू शुरू में करते हैं। इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। जब ध्यान लगाते हैं तो कई लोग पैर से शुरू करके आज्ञा चक्र पर उनका ध्यान समाप्त होता है, लेकिन बाबा कहते हैं पैर से शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर आत्मा को देखने का अभ्यास करो। अब आत्मा है बिंदु, लेकिन वो ऊर्जा है, शक्ति है। तो उसका जो लाइट है, प्रकाश है, वो ज्योति के समान है, दिए की ज्योत के समान है ना। ज्योति को देखा है आप, मंदिर में दिया जलाते हैं, ज्योत होती है। किसी की मृत्यु होती है, हम दिया जलाते हैं, ज्योत होती है। तो आत्मा का प्रकाश वैसे है। तो अब जब हम आत्मा को देखने का अभ्यास करेंगे, मस्तक के बीच में बिंदु और ज्योति स्वरूप आत्मा, तो शरीर की सच्चाई क्या है? शरीर खत्म होने वाला है। आत्मा की सच्चाई क्या है? आत्मा कभी भी, ऊर्जा शक्ति कभी खत्म नहीं होती। हां, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। तो सवाल ये उठता है, शरीर और आत्मा में से मैं कौन हूं? तो यहां पर संबंध बताया है। शरीर को हमारे शास्त्रों में, पुराणों में रथ कहा है। क्या कहा है? रथ। और आत्मा को कहा है रथी। रथ और रथी का मतलब क्या है? अपनी भाषा में हम कहें तो गाड़ी और ड्राइवर। इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली वाला ड्राइवर कौन है? आत्मा है। तो अब सवाल ये उठता है, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं? बताइए सभी एक साथ, कन्विंस्ड? शरीर तो नहीं, शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप सभी के पास आजकल मोबाइल है, मोबाइल आपने बहुत महंगा लिया 80,000 का, उसमें आपने सिम नहीं डाला, चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, गेम खेल सकते हैं लेकिन सिम फोन नहीं चलेगा। उसी तरह से शरीर एक कवर है, उसके अंदर जो सिम है वो कौन है? आत्मा। और सिम क्या है? संस्कार, इंटेलेक्ट और माइंड, है ना, ये सिम है। तो हाँ, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और मेरा क्या है? शरीर है। तो जब आगे चल के आप मुरली सुनेंगे ना, तो मुरली में ये शब्द आएंगे। क्या शब्द आएगा? रथ और रथी, रथ और रथी। दूसरे दो शब्द बाबा इस्तेमाल करते हैं, देह और देही। हाँ, देह क्या है? शरीर। और देही कौन है? आत्मा। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और ये शरीर मेरा है। आत्मा मरती है? नहीं, शरीर खत्म होगा, ये फैक्ट है। कब होगा नहीं पता है, बट मैं तैयार हूं। कौन कौन है जो कहते हैं कि मैं आत्मा हूं और शरीर की मृत्यु की मुझे डर नहीं है, मैं आत्मा हूं? अच्छा, अब थोड़ी सी एग्जाम ले, परीक्षा ले आपकी। आत्मा का रूप क्या है? बिंदु, ज्योति। आत्मा बिंदु और ज्योति रूप है, प्रकाशित ज्योति है, है ना? ओके। आत्मा शरीर में कहां रहती है? आत्मा की कर्मेंद्रिया कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार। और आत्मा के असली संस्कार कौन से हैं? चलिए गिनिए, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। अच्छा, अब ये शांति की शक्ति को मैंने समझा, तो एक होता है अनुभव करना, भीतर में जाके मैं शांत हूं, शांत हूं, शांत हूं। यहां सिर पर जैसे बर्फ की सिल्ली रखी हो, शांत हूं, शांत हूं, शांत हूं। शांति का अनुभव भीतर से कैसे करेंगे? तो उसका एक साधन है, अगर आप कम सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके विचार, आपके विचारों में शांति होगी। जब आप नेगेटिव सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, तो अशांति होगी। ठीक है, सिंपल है। इसीलिए जब अब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, योग अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, तो क्या सोचना है? तो पांच बातें सोचनी है। जब आप योग में बैठते हैं तो पांच बातें सोचनी है। पहला सवाल खुद से पूछना है, मैं कौन? मैं कौन? आत्मा। दूसरा सवाल, मैं कैसी, कैसी दिखती है आत्मा? बिंदु ज्योति। मैं शरीर में कहां? मेरे असली संस्कार? शांति, प्रेम, आनंद। ये अपने आप को सुनाना है हमें, बार बार खुद को याद दिलाना है। और अगला प्रश्न है, ये दुनिया, ये मेरा असली घर नहीं है, इस दुनिया में मैं आत्मा कहां से आई? तो इस आकाश के ऊपर और एक आकाश है, खाली जगह है, जहां अन्य चार तत्व नहीं है। उस आकाश को ब्रह्म महातत्व कहा जाता है। उस आकाश में आत्मा अपने असली बिंदु ज्योति स्वरूप में रहती है। उस आकाश को परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्म महातत्व कहा जाता है। हाँ, तो कई बार हम कहते हैं ना, ये सृष्टि एक नाटक है, हम सभी एक्टर है, आत्मा एक्टर है, शरीर रूपी वस्त्र धारण कर एक्टिंग कर रही है, तो ये हमारा घर नहीं है, तो हम कहां से आए हैं? तो लोग कहते हैं हम ऊपर से आए हैं। और ऊपर जाना है हमें वापस, तो हम परमधाम में परमात्मा के साथ बिंदु स्वरूप में रहते थे, यहां आ गए खेल खेलने के लिए और अब जाना भूल गए। अब पांचवा जो प्रश्न है, मेरा असली घर कौन सा? आत्मा का असली घर कौन सा है? परमधाम। अब उसे याद करना है, क्यों? क्योंकि वहां हमें वापस लौटना है। यह सृष्टि नाटक खत्म हो रहा है, आत्माओं को अपने घर वापस जाने का समय आ चुका है। अब वो घर दिखता कैसे है? आकाश कैसे दिखता है? नीला। उस आकाश में चंद्र सूर्य तारागण नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए उस आकाश में अगर कोई प्रकाश है तो हम आत्माओं का प्रकाश है। अगर यहां की सारी लाइट्स बंद कर दी जाए और यहां बहुत सारे दिए जला दिए जाए तो किस तरह का प्रकाश होगा? येलो, ऑरेंज मिक्स प्रकाश होगा। वैसा प्रकाश उस आसमान में, उस आकाश में है। आपने कभी सूरज को उगते हुए या अस्त हुए होते हुए देखा है? देखा है कैसा प्रकाश होता है, लालिमा कैसे होती है आकाश में? परमधाम में वैसा धीमा लाइट है, और इसीलिए जब हम योगाभ्यास करते हैं तो यहां रेड लाइट ऑन करते हैं ताकि हम परमधाम का अनुभव कर सके। तो अब समय तो समाप्त तो हो गया है, हमारा असली घर है परमधाम। अब योग अभ्यास में हम इन पांच बातों को रिपीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा मन एकाग्र हो जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ मिनटों के लिए हम अभ्यास करें। जो ज्ञान प्राप्त किया है हमने, उस ज्ञान के आधार से अपने मन को और बुद्धि को उस दिशा में ले जाना है। सो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे पहले गहरी और लंबी सांस लेनी है। लंबी गहरी सांस लेने से हमारे ब्रेन से लेकर बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है और बॉडी रिलैक्स फील करती है। सो गहरी और लंबी सांस ले। शरीर में जो वेट है, वजन है, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दे। मेंटली फील करे कि मैंने बॉडी को, बॉडी के वेट को वातावरण में दे दिया है। शरीर को एकदम हल्का, हवा भरे हुए बलून की तरह से हल्का महसूस करें। शरीर की वास्तविकता को समझे, पांच तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का विनाशी शरीर। इस समय मेरी अमानत। गहरी सांस लेते हुए शरीर से अपना ध्यान आत्मा की ओर ले आए। मस्तक के बीच में विराजमान दिव्य शक्ति, मैं आत्मा हूं। मस्तक रूपी सिंहासन पर आराम से विराजमान, मैं राजा हूं, मास्टर हूं। अपने बिंदु ज्योति स्वरूप को मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूं। पूरा ध्यान उस ज्योति पर एकाग्र है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ की रथी हूं। चलिए अब अपने शांत स्वरूप को भीतर से अनुभव करें। मैं आत्मा शांत 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 स्वरूप हूं। शांति के प्रकंपन आत्मज्योति से निकलकर संपूर्ण शरीर को शांति का एहसास करा रहे। गहरी सांस ले। अब आत्म ज्योति के अपने स्वरूप के साथ इस शरीर से थोड़ा सा डिटैच हो जाए, अलग हो जाए। आत्मा ने शरीर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। मन और बुद्धि के विमान में बैठकर आकाश की ओर प्रस्थान करें। देखिए वो ज्योति चंद्रयान की तरह आकाश में पहुंच चुकी है। चांद सूरज सितारों पर पहुंचना मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे उससे भी ऊपर जाना है। आकाश की कक्षा को पार कर मैं परम धाम शांति धाम रूपी आकाश में पहुंच गई हूं। मैं आत्मा शरीर से मुक्त स्वतंत्र अपने असली संस्कारों के स्वरूप में मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश पवित्र शांति शक्तिशाली शांति का वातावरण। ये पवित्र धाम मेरा असली घर है, मेरा रेस्ट हाउस है। धरती के कर्म पूरे करके हर रोज कई बार मुझे यहां आना है। ये मेरा अपना घर है। चारों ओर टिमटिमाते अनंत सितारे, ये सब आत्माएं मेरा परिवार है। हम सब एक पिता की संतान, आपस में शांति और प्रेम के संबंध में परम धाम शांति धाम मुक्ति धाम जहां मुझे भरपूर आराम मिलता है, वहां अपनी जगह निश्चित करके मैं वापस धीरे धीरे आकाश के मार्ग से धरती को छूते हुए अपने इस नियुक्त शरीर में, मस्तक के बीच में वापस लौटती हूं। मस्तक के बीच से परमधाम तक का ये रास्ता, ये सफर मेरे लिए एक सेकंड का सफर है। आना और जाना, जब मैं वहां जाती हूं अपने आप को सर्वगुण सर्वशक्तियों से भरपूर करके वापस जब इस शरीर में आती हूं तो मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती हूं। अब मुझे इस शरीर के द्वारा कर्म करना है। जो शांति मैंने भीतर अनुभव की, परमधाम में अनुभव की, उसको अपने जीवन में कर्म में लाना है। मेरे विचार, मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, मेरे बोल, मेरे कर्म शांति से प्रेरित। गहरी सांस लें और देखिए अपने आप को सारा दिन शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करते हुए। आज सारा दिन स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करनी है, खुश रहना है, शांत रहना है, अपने आप को महसूस करना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये बार बार याद करना है। ओम शांति।